का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं हरि भटनागर की लिखी कहानी जंक। चिरौटे को उस वक्त बेहद गुस्सा आया जब उसके घर में एक दूसरा चिरौटा घुस आया। बहुत मुश्किल से उसने इस घर में पनाह पाई थी। मुश्किल इसलिए कि इस घर का मालिक अजीब तरह का सरका हुआ आदमी था। घर की दिक्कतों या पेचीदा नौकरी की वजह से वह सहज नहीं दिखता, नाया रहता, जैसे कोई बोले तो झगड़ पड़ेगा, घंटों दिमाग खराब किए रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तो बच्चों को रतिया डालेगा, उनकी किताबें फाड़ डालेगा, पत्नी के झोंटे हिलाकर फिर दीवार से टकरा देगा। ऐसी कई सारी हरकतें वह कर गुजरेगा। तो ऐसे आदमी के घर में पनाह पाना कितना मुश्किल था। और यही मुश्किल आई भी। हुआ यूं कि उसने दीवारों की संग सेंध में, जहां पीपल असंख्य जड़े फैलाकर ऊपर हरे पत्तों के साथ मगन है, घोंसले के लिए तिनकों का ढेर जमाना शुरू किया अपनी चिरैया के साथ। उस दिन कोई दिक्कत नहीं आई और ना ऐसा ख्याल दिमाग में उठा। दिक्कत तो सुबह आई जब यह आदमी बनियान पहने किसी आता जांघिया के अंदर बुरी तरह खुजाल मचाता, छोटे से खुले हिस्से में जिसे आंगन कहा जा सकता है, नाली के ऊपर पत्थर की पटिया पर मंजन कुल्ला करने बैठा। आदमी से पहले औरत और बच्चे पटिया का इस्तेमाल कर चुके या सुभीते की जगह है। यहाँ मंजन कुल्ला करने, नहाने, कपड़े पछीटने, बर्तन घिसने और पेशाब वगैरह जैसे काम किए जाते हैं। आंगन के एक हिस्से में कबाड़ ठसा है जो छूने पर भड़बड़ाकर नीचे आ गिरता है, और तब ऐसी विषैली तीखी गंध उठती कि नाक में चिनचिनाहट मचने लगे और गला खुजली से भर जाता। दूसरे हिस्से में नाली के पास पटिया के बगल में तीन बटके, दो टुचकी बाल्टियां जिनके हैंडल गायब हैं, एक ड्रम जो जंग खाया है और ऊपर कटाफटा की जरा सी लापरवाही पर काट खाता, और सिर पर लोहे का तार जिस पर सूखे अधसूखे कपड़े पड़े हैं, जिन्हें आदमी की घरवाली दोपहर को मुंगरियों से पीट पीट कर धोती और सूखने के लिए मक्खियों से भरे इस तार पे डाल जाता। आदमी काफी दुबला पतला है, शरीर में हाड़ ही हाड़ दिखते, लेकिन फुर्ती भाई साहब बला की, आंखें अंदर को धसी और चीये बराबर है, नाक पतली लंबी टेढ़ी और आगे तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई, गालों में खाई है जिससे मुंह काफी छोटा नजर आता, माथा छोटा है और उस पर सिर के खिचड़ी बाल ऐसे खड़े हैं जैसे किसी लंगूर बंदर की याद आ जाए, हाथ पतले पतले नीली नसों से भरे, उंगलियां अंडीली और सूखी। जैसे ही यह आदमी सिसियाता हुआ पटिया पर आकर बैठा और हड़ीली सूखी उंगलियों से मंजन की शीशी उठाई और बाएं हाथ की अंजुरी पर मंजन गिराया और दाएं हाथ की उंगलियों को गीला करने के ख्याल से पंजा मटके की तरफ बढ़ाया कि हाथ में तिनके पन्नियों का गुच्छा, मटके बाल्टियों या ये कहें हर तरफ कचरा ही कचरा, उसके माथे पर बल पड़ गया। गुस्से के लिए इतना काफी था, पहले सोचा कि बच्चों की कारस्तानी हो, लेकिन जब ऊपर तंध की ओर देखा तो चिरौटा और चिरैया थे जो ची ची करते घोंसला बनाने में मशगूल। चीखते हुए वह बोला, मेरा ही घर बचा था सत्यानाश के लिए, दुनिया भर का कचरा लाओ और डालो मेरे सर पर। मंजन झाड़ता हुआ वह उठ खड़ा हुआ, कचरा और गू करो तुम्हारी ऐसी की तैसी हराम जादों, मिचमिची आंखों व गंदी गंदी गालियों की बौछार करने लगा जिससे उसकी घरवाली भय से सिकुड़ गई। स्टोव पर वह रोटी सेक रही थी, रोटी की जगह घबराहट में तवे को दबा बैठी और छौछिया उठी। बावजूद इसके आदमी का डर ज्यादा भारी लग रहा था, लग गया कोई गलती हो गई है, अब तो भाई आफत आने वाली। गाली देकर जब आदमी थक गया, बुरी तरह दरवाजा ठेलता हाँफता हुआ अंदर आया और लचकदार लग्घी उठाने लगा। औरत का भय कुछ कम हुआ, उसने बच्चों को देखा जो कातर से बोरे पर पालथी मारे बैठे हिज्जे याद कर। लग्घी से आदमी कभी मार पिटाई नहीं करता। लग्घी दीवार के सहारे जमीन पर पड़ी थी जिसके एक सिरे पर छोटा सा हंसिया था तारों से बंधा। जब कभी मुंह डाने पर आदमी बाहर झूमते नीम से दातून के लिए इस लग्घी का इस्तेमाल करता था। बहरहाल इस वक्त भद्दी गालियां बकते हुए उसने लग्गी उठाई और चिल्लाता हुआ आंगन की ओर बढ़ा। आधे अधूरे घोंसले को उसने लग्घी से खोदना शुरू किया। बड़बड़ाते हुए बोला कि बनाओ माँ के घोंसले और बनाओ, पूरा पूरा बांस उतार दूंगा सारे। थोड़ी देर में तिनके, पन्नियों और रुई के फाहों से वह ढका। अधूरा घोंसला जमीन पर था जिसे वह बाहर नाली में डाला। चिरौटा और चिरैया दूर पेड़ की पुलई पर बैठे अधबने घोंसले को उजड़ते देखते रहे और दुखी होते। चिरैया ने कहा, यह तो बहुत ही नाकिस है कमी। चिरौटे की आंखों में जवाब था, देख लो, जरा भी मर्दूत को रहम नहीं आया, मैं पेट से हूं, अंडे देने वाली हूं। चिरौटे की आंखों में वही जवाब, इसके तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े जानहार। छोटी गाली दे रही हो, इसके तो सब मर जाए। चिरौटे ने उसकी चोंच पर पंजा रखा, बोला, ना ऐसे बद्दुआ ना दो, बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, वे तो बेचारे इस फाड़खाओं से खुद ही परेशान होंगे। कचरा फेंक कर आदमी आंगन में आया और पटिया पर बैठ के मंजन कर बीच बीच में वह संध की ओर ऊपर देख लेता, जैसे कह रहा हो कि आगे से घोंसला दिखा तो बांस बजा दूंगा। मंजन के बाद आदमी ने पंजों के बल बैठकर घुटने जमीन पर टिकाए, बनियान उतारी और सिकुड़ गए। हाथ में उसके मटके का मुंह था, जैसे उठाने से पहले तौल रहा। यकायक मटका सिर के ऊपर था और पानी झरने की तरह बदन पर बहने लगा। मटका उसने नीचे रख दिया और गर्दन झिटक कर थोड़ी देर स्थिर बैठा रहा। ठंडे पानी ने जैसे उसे ऐसा कर दिया हो। पल भर बाद उसमें हरकत हुई, बदन पर उंगलियां दौड़ने लगी, वह पानी कांचने लगा। उंगलियों में अब जनेऊ था और जनेऊ पीठ पर दौड़ रहा था, घिस्सा देता हूं, जगह जगह चकत्ते उभर रहे थे। गर्दन टेढ़ी करके उसने तार से तौलिया खींची और बदन पोछने लगा। अंत में तौलिया लपेट कर गीली जांघिया नीचे सरकाता हुआ अंदर चला आया। चिरौटे ने गहरी सांस भरी, चिरैया को देखा और तनकर बोला, मैं अब इसी घर में घोंसला बनाऊंगा, देखता हूं कब तक नोचता है। और उसने घोंसले के लिए मुलायम मुलायम तिनके, पन्निया और रुई के फाहे बटोरने शुरू कर। चिरैया ने उसके कंधे से कंधा मिलाया। 15 दिन तक वह रोज घोंसले के लिए माल लाता रहा और जमाता रहा, और सुबह आदमी उन्हें भयंकर चीख गुहार के बीच बिखेर। 16वें दिन आदमी को पता नहीं क्या हुआ, घोंसले की तरफ उसकी लग्गी नहीं। मंजन करते करते संध की ओर देखा, जैसे चिरौटे से कह रहा हो, तू मानने वाला नहीं, घोंसला बना के ये रहेगा। यकायक वह चीख पड़ा, मर साले, मैं हारा तू जीता, आगे से तुझे जो करना हो कर। फिर क्या था, मारे खुशी में चिरौटे ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत ही सुंदर, आरामदेह और सुरक्षित घोंसला बनकर तैयार था। लेकिन यह दुश्मन चिरौटा जो उसके घर में घुस आया है, उसे उजड़वा देगा। आदमी ने तो उसे किसी तरह पनाह दे दी थी, लेकिन इस कमबख्त की वजह से अब उसका घोंसला बचने वाला नहीं। तिनके पन्निया बटोरेगा, गंदगी करेगा, आदमी का दिमाग खराब होगा, फिर ना यह रह पाएगा और ना ही मैं रह पाऊंगा। चिरौटा युद्ध के लिए तैयार, सोच लिया कि दुश्मन चिरौटे को मार के भगा के ही दम ले। मगर यह दुश्मन चिरौटा बहुत ही चालाक और चतुर, जमाना देखा हुआ, सीधे आमने सामने नहीं लड़ रहा, पता नहीं कौन सी 8 सुरक्षा कवच के साथ था। लगता कि मार का उस पर कोई असर ही नहीं, समूची चोट उल्टे उसे खुद ही को लगती। चिरौटा परेशान था, आखिर यह दुश्मन चिरौटा कहां से और किससे प्रशिक्षित होकर आया है, और वह निरा अनाड़ी मूरा खकाई, सारी चालों से नावाकिफ, पूरा का पूरा लठ बज्जर। चिरौटे को इस बात का भी गहरा अफसोस हुआ कि दुश्मन चिरौटा उसकी किसी बात का मुखर जवाब नहीं देता, उसी की तरह वार करता है और हर वक्त चौकस रहता है अपने सुरक्षा कवच में। उस दिन अंधेरी रात में जब चिरौटा काफी गुस्से में था, जाग रहा था और बार बार करवटें बदल रहा था, चिरैया ने पूछा कि तू आखिर सो क्यों नहीं रहा है, कई दिनों से मैं देख रही हूं तू रात रात जागता रहता है, गुस्से में बड़बड़ाता रहता है, आखिर बात क्या है? चिरौटे ने कहा, एक दूसरा चिरौटा हमें बेदखल करना चाह रहा है और हमें उजाड़ देना चाह रहा है। जब तक मैं उसे भगा नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। दूसरे दिन सुबह चिरैया ने देखा, चिरौटा दुश्मन चिरौटे के सामने था, गुस्से में भरा, मरने मारने पर उतारू। लेकिन दुर्भाग्य, दुश्मन चिरौटा सुरक्षा कवच के पीछे था, जिसे उसका चिरौटा भेजने में पूरी तरह से असमर्थ था। चिरैया जब युद्ध के लिए मैदान में उतरने को हुई, चिरौटे ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि मैं अकेला ही काफी, तू चूजों को संभाल, कहीं नीचे अटपके तो अनर्थ हो जाए। चिरैया उसकी बात मान गई और घोंसले पर जा बैठ। इस बीच आदमी ने दरवाजा खोला और आंगन में दाखिल होने को था कि चिरौटे को देखकर मुस्कुरा उठा, आंखों में हंसी दौड़ गई और चौखट पर ही खड़ा रह गया। क्या कर रहा है नालायक? बुदबुदाते हुए उसने आईने को अपनी जर्जर धोती से ढांपा और नहाने लगा। आदमी के आते ही चिरौटा फुद्ध हो गया और पेड़ की टंगाल पर जाके बैठ गया और आदमी को नहाता देखने लगा। जब आदमी नहाकर अंदर चला गया, चिरौटा गायब। जरूर आदमी ने उसे इस कपड़े में छिपा दिया, लिहाजा वह कपड़े पर चोंच और पंजों से वार करने लगा। चोंच और पंजों की मार इतनी जबरदस्त थी कि थोड़ी देर में धोती नीचे जमीन पर आ गई। धोती का गिरना था कि दुश्मन चिरौटा प्रकट हो, सचमुच वह धोती में छिपा बैठा था। चिरौटे को आदमी पर गुस्सा आया, आखिर उसने दुश्मन को छिपाया क्यों? उसने उसके साथ क्या बुरा बर्ताव किया है? उसके घर में घर बनाने के अलावा उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, घर भी उसकी सहमति पर बनाया, फिर यह नाइंसाफी क्यों? वह चिरौटे से लड़ने के लिए जैसे ही झपटा, आदमी चीखता हुआ अंदर से बाहर आया। उसके हाथ में छड़ी थी जिसे चमकाते हुए वह चिरौटे पर बिफड़ा कि आगे से लड़ाई की तो साले मार गिराऊंगा। चिरौटा पेड़ की डगाल पर बैठा सोचने लगा, यह आदमी मुझे दुश्मन से लड़ने की आजादी क्यों नहीं दे रहा है? क्या चाहता है, मैं हार मान लूं और बेदखल हो जाऊं और दर दर की ठोकरें खाऊं? आदमी के अंदर आते ही चिरौटा जब आया तो दुश्मन फिर गायब था। आदमी ने इस बार उसे मजबूत से दिखती बनियान में छिपा दिया था, जिसमें से निकाल पाना उसके वश का ना था। बावजूद इसके चिरौटे ने चीखते हुए बनियान पर जबरदस्त प्रहार शुरू किया। आदमी अंदर बैठा रोटी खा रहा था, औरत स्टोव के सामने रोटी बनाती जा रही। यकायक आदमी जोरों से चीखा, औरत डर गई, अब क्या गलती हो गई? भयभीत निगाहों से आदमी को देखने लगी, दाल में कंकड़ आ गया क्या? आदमी छत की ओर मुंह किए बुरी तरह गरज रहा था, आंखें माथे से सटी थी, मुंह में कौट हंसा था दाल से भरा, बात समझ में नहीं आ रही थी। यकायक चपर चपर कौर चबाता हुआ आदमी बोला, ये चिरौटा चैन से बैठने नहीं देगा। औरत का भय कुछ कम हुआ, मुस्कुराकर रह गई, चलो गुस्सा उस पर तो नहीं। अचानक आदमी पांव से थाली जोरों से ठेलता हुआ गुस्से में भरा और दरवाजे के पीछे छड़ी की ओर बढ़ा, ताले की मैया बजा दूंगा आज। नई धोती फाड़ दी, कुछ ना बोला, अब बनियान की मैया करने में लगा है। दरवाजा खोलने से पहले उसने अनगिनत छड़ी दरवाजे पे मारी, फिर झटके से दरवाजा खोला जो दीवार से जा टकराए और ढेर सारा प्लास्टर झड़ा। आंगन में पांव रखते हुआ चीखा, काहे मैयो करने पर तुला है? वह छड़ी तांता सपाटे से बड़ा कि चिरौटा फुद था। फुद होने से पहले उसने पंजों और चोट से ऐसे खूनी वार किए कि बनियाइन फट गई, चिथड़े उड़ गए और जमीन पर। आदमी ने बनियाइन की हालत देखी तो आंखों में खून उतर आया। गरज कर उसने औरत को बुलाया और हाँफते हुए बोला, देखो साले चिरौटे को बनियाइन चीट डाली। औरत अंदर ही अंदर खुश हुई, अच्छा तो हुआ तुम्हें बंबू करने वाला कोई तो है। ऊपर से गुस्सा दिखाते हुए बोली, बड़ा ही खराब है मुंह जला। आदमी यकायक गुस्सा कर बोला, अच्छा भाग यहां से, बढ़िया ही, और उसे गालियां दे। औरत ने खाक होते हुए माथा सिकोड़ा और आदमी को जलती निगाहों से देखा, अरे चाहता क्या है यह कमीना, हर वक्त बस बर्रा रहता है बात बेबात। आदमी ने उसकी ओर ध्यान ना दिया अव्वा किवाड़ की आड़ में जाके खड़ा। अव्वा चिरौटे को मार के ही दम लेगा। चिरौटा पेड़ की पत्तियों में छिपा बैठा आदमी को देख रहा। काफी देर तक आदमी किवाड़ की ओट में घात लगाए खड़ा रहा। जब चिरौटा नहीं आया तो उसने आईने को उसी धोती से लपेटा, ऊपर से बनियाइन मजबूती से बांधी, या सोचकर कि अब तो साला इसका बाप भी इसको नहीं खोल पाएगा, और फिर वो अंदर चला। जैसे ही उसने पैर के पंजे पर थाली खींची और कौर मुंह की ओर ले जाने को हुआ, चिरौटे की पंजे और चोंच मारने की आवाज आई। बेतरह झल्लाते हुए वह उठा। साले को जिंदा जला दूंगा। उसने चारों तरफ निगाहें डाली जैसे कोई कारगर हथियार खोज रहा हो, और जब ऐसा कुछ भी हथे ना लगा तो वह जोर जोर से हथेलियां भरने लगा। मानो ऐसा करने से उसे रास्ता सूझ जाएगा, और वास्तव में उसे रास्ता सूझ गया। वह उसे अनचित्ते में मार गिराए। तब एक पांव चलते हुए वह दरवाजे की ओर बढ़ा और संध से देखा। जो नजारा सामने था हैरत में डाल। धोती और बनियाइन नीचे जमीन पर गिरी पड़ी। चिरौटे की चोंच से बेतरह लहू बह रहा, लेकिन वह वार पर वार किए जा रहा था बिना रुके। जब चोंच से वह वार करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया तो उसने पंजे चलाने शुरू कर दिए, और पंजे अब भी घायल, उनमें बेतरह खून बह रहा। आदमी मुस्कुराया, लेकिन वह खुलकर मुस्कुराना। अभी आप सुन रहे थे हरि भटनागर की लिखी कहानी जंग। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी।